नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। लिज वाइजमैन की पुस्तक मल्टीप्लायर्स रिवाइज्ड एंड अपडेटेड नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार पर केंद्रित एक व्यावहारिक प्रबंधन पुस्तक है।
इसका मूल प्रश्न सरल लेकिन महत्वपूर्ण है, क्या नेता अपनी टीम की बुद्धि और क्षमता को सक्रिय करते हैं या अनजाने में उसे सीमित कर देते हैं।
वाइजमैन दो विपरीत नेतृत्व शैलियों का ढांचा प्रस्तुत करती है। मल्टीप्लायर वे नेता हैं जो लोगों की प्रतिभा, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी को विस्तार देते हैं। डिमिनिशर वे नेता हैं जो स्वयं को केंद्र में रखकर दूसरों की पहल, ऊर्जा और सोचने की जगह घटा देते हैं।
पुस्तक का उद्देश्य केवल खराब नेतृत्व की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन दैनिक व्यवहारों को पहचानना है जिनसे सक्षम नेता भी अनजाने डिमिनिशर बन सकते हैं।
संशोधित संस्करण में इस अनजाने प्रभाव को समझने और बदलने पर विशेष ध्यान है। यह पुस्तक बताती है कि बेहतर परिणाम केवल अधिक प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त करने से नहीं, बल्कि उपलब्ध सामूहिक बुद्धि तक बेहतर पहुंच बनाने से आते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मल्टीप्लायर और डिमिनिशर, नेतृत्व के दो अलग प्रभाव, पुस्तक का केंद्रीय अंतरपद, व्यक्तित्व या तकनीकी विशेषज्ञता का नहीं बल्कि नेता के प्रभाव का है। डिमिनिशर अक्सर मानते हैं कि सर्वोत्तम उत्तर उनके पास है,
इसलिए वे चर्चा पर हावी होते हैं, जल्दी समाधान देते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय अपने हाथ में रखते हैं। इससे टीम के सदस्य निर्देश की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वे अपनी जानकारी साझा करने, असहमति रखने या अधूरे विचार पेश करने में सावधान हो जाते हैं।
परिणाम स्वरूप संगठन के पास प्रतिभाशाली लोग होते हुए भी उनकी पूरी क्षमता उपयोग में नहीं आती।
इसके विपरीत मल्टीप्लायर यह मानकर चलते हैं कि लोगों में उपयोग न हुई बुद्धि मौजूद है।
वे प्रश्नों, स्पष्ट अपेक्षाओं और सार्थक जिम्मेदारी के माध्यम से उस बुद्धि को सामने लाते हैं। इसका अर्थ नेता का निष्क्रिय हो जाना नहीं है। मल्टीप्लायर दिशा तय करते हैं, सही लोगों को जोड़ते हैं और उत्तरदायित्व बनाए रखते हैं, पर वे हर उत्तर स्वयं नहीं देते। वाइजमैन का ढांचा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह नेतृत्व को केवल करिश्मे या प्रेरक भाषण से नहीं मापता। यह पूछता है कि नेता की उपस्थिति में दूसरे लोग अधिक सोचते, सीखते और योगदान देते हैं या कम। यही प्रभाव टीम की दीर्घकालिक क्षमता का अधिक विश्वसनीय संकेतक बनता है। दूसरा, प्रतिभा को पहचानना और सही स्थान पर लगाना। मल्टीप्लायर नेतृत्व की पहली प्रमुख आदत प्रतिभा को केवल संसाधन नहीं, विशिष्ट क्षमता के रूप में देखना है।
पुस्तक के अनुसार प्रभावी नेता लोगों की तथाकथित नेटिव जीनियस, अर्थात वह काम जिसमें वे स्वाभाविक रूप से उपयोगी और सक्षम हैं, को पहचानने का प्रयास करते हैं। यह दृष्टि केवल नौकरी के औपचारिक विवरण पर निर्भर नहीं रहती।
कोई व्यक्ति विश्लेषण, ग्राहक समझ, संबंध निर्माण, संचालन या समस्या सुलझाने में अपेक्षा से अधिक योगदान दे सकता है। डिमिनिशर इसके उलट अक्सर प्रतिभा को अपने नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं या लोगों को संकीर्ण भूमिकाओं में बांध देते हैं। मल्टीप्लायर प्रतिभा की विविधता को काम की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हैं और लोगों को ऐसी जिम्मेदारी देते हैं जिसमें उन्हें बढ़ने का अवसर मिले।
इसका व्यावहारिक अर्थ है कि प्रबंधक नियमित रूप से पूछे कि कौन किस प्रकार की समस्या पर सबसे अच्छा सोचता है, किसे किस चुनौती से सीख मिलेगी और किन लोगों की आवाज अभी निर्णय प्रक्रिया से बाहर है। यह केवल प्रशंसा देने का तरीका नहीं है।
जब व्यक्ति की क्षमता और जिम्मेदारी का मेल बेहतर होता है तो निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ती है और नेता पर अनावश्यक निर्भरता घटती है।
प्रतिभा का उपयोग तब वास्तविक होता है जब उसे दिखाई देने, विकसित होने और परिणाम के लिए जवाबदेह बनने की जगह मिलती है।
तीसरा, कठिनाई को दबाव नहीं, सीखने की चुनौती बनाना। वाइजमैन मल्टीप्लायर वातावरण को अत्यधिक आरामदेह नहीं बल्कि तीव्र और उत्पादक बताती है।
इसका मतलब भय, अपमान या अव्यवस्थित दबाव पैदा करना नहीं है।
मल्टीप्लायर ऐसी चुनौती रखते हैं जो लोगों को अपनी वर्तमान आदतों से आगे सोचने के लिए मजबूर करे, साथ ही उद्देश्य और सीमाएं पर्याप्त स्पष्ट हो। जब काम बहुत आसान हो तो अनुभव और ज्ञान निष्क्रिय रह सकते हैं। जब चुनौती असंभव, अस्पष्ट या दंडात्मक लगे तो लोग जोखिम लेने से बचते हैं।
पुस्तक का संतुलन इसी बीच है, ऊंची अपेक्षा के साथ सीखने और योगदान की वास्तविक जगह।
डिमिनिशर कई बार स्वयं को बचाने के लिए काम को अत्यधिक नियंत्रित करते हैं या उल्टे ऐसी अराजकता बनाते हैं जिसमें किसी को अधिकार और प्राथमिकता समझ नहीं आती। दोनों स्थितियों में टीम की बुद्धि बिखरती है। मल्टीप्लायर कठिन प्रश्न सामने रखते हैं और लोगों को समस्या के स्वामी बनने देते हैं।
वे गलतियों से सीखने की गुंजाइश रखते हैं लेकिन मानकों से समझौता नहीं करते। व्यवहार में नेता किसी जटिल लक्ष्य को स्पष्ट समस्या के रूप में रख सकता है, उपलब्ध संसाधन और निर्णय सीमा बता सकता है, फिर टीम से विकल्प और जोखिमों का विश्लेषण मांग सकता है। इस तरह चुनौती क्षमता की परीक्षा भर नहीं रहती बल्कि क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया बनती है। चौथा, बहस के बाद स्पष्ट निर्णय, सामूहिक सोच और जवाबदेही। पुस्तक में निर्णय प्रक्रिया को मल्टीप्लायर व्यवहार का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। मजबूत नेता हर विषय पर सर्वसम्मति खोजने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वे निर्णय से पहले विचारों की वास्तविक बहस कराते हैं।
इसका अर्थ है कि अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को सुना जाए, धारणाओं की जांच हो और विकल्पों के लाभ तथा जोखिम स्पष्ट किए जाए।
डिमिनिशर अक्सर दो विपरीत तरीकों में फंसते हैं। वे या तो आरंभ से ही अपना उत्तर घोषित कर देते हैं, जिससे बैठक केवल औपचारिक स्वीकृति बन जाती है, या फिर वे निर्णय टालते रहते हैं और टीम को अस्पष्टता में छोड़ देते हैं। मल्टीप्लायर बहस को निर्णय का विकल्प नहीं बनने देते। वे समस्या, निर्णय अधिकार और समय सीमा स्पष्ट करते हैं, फिर पर्याप्त चर्चा के बाद एक स्पष्ट निर्णय लेते हैं या उचित व्यक्ति को लेने देते हैं। यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहभागिता तभी भरोसेमंद लगती है जब लोगों को पता हो कि उनकी राय का उपयोग कैसे होगा और अंतिम जवाबदेही किसकी है।
कठोर बहस से विचार बेहतर होते हैं, जबकि स्पष्ट निर्णय से काम आगे बढ़ता है। इस ढांचे में असहमति को अवज्ञा नहीं माना जाता, उसे बेहतर समाधान पाने के लिए आवश्यक जानकारी माना जाता है। इसलिए टीम सदस्य केवल आदेश पालन नहीं करते, बल्कि निर्णय के तर्क को समझकर उसके क्रियान्वयन में जिम्मेदारी लेते हैं। अंत में एक्सीडेंटल डिमिनिशर, अच्छी मंशा के अनपेक्षित दुष्परिणाम, संशोधित और अपडेटेड संस्करण की विशेष उपयोगी अवधारणा एक्सीडेंटल डिमिनिशर है। वाइजमैन दिखाती है कि सीमित करने वाला नेतृत्व हमेशा अहंकार, असंवेदनशीलता या खराब इरादे से नहीं आता। अत्यंत सक्षम, तेज, मददगार और परिणामोन्मुख नेता भी अनजाने में दूसरों की क्षमता घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई नेता हर संकट में तुरंत बचाव करने लगे, लगातार नए बड़े विचार देता रहे या गुणवत्ता के नाम पर हर विवरण स्वयं ठीक करे,
उसकी मंशा सहयोग या उत्कृष्टता हो सकती है, लेकिन टीम यह सीख सकती है कि अंतिम उत्तर नेता ही देगा। तब पहल, स्वामित्व और स्वतंत्र निर्णय कमजोर पड़ते हैं। यह विचार पुस्तक को केवल दूसरों का मूल्यांकन करने का साधन नहीं रहने देता, बल्कि आत्म परीक्षण का उपकरण बनाता है।
सुधार का पहला कदम अपनी प्रवृत्ति पहचानना है, जैसे तुरंत उत्तर देना, बैठक में अधिक बोलना, जिम्मेदारी वापस ले लेना या अनुभव के आधार पर विकल्प बंद कर देना।
अगला कदम व्यवहार बदलना है, अधिक प्रश्न पूछना, समस्या का स्वामी स्पष्ट करना, निर्णय के लिए समय देना और सहायता को नियंत्रण में न बदलना।
पुस्तक यह दावा नहीं करती कि नेता को अपनी विशेषज्ञता छोड़ देनी चाहिए। इसकी बात यह है कि विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब वह दूसरों की सोच को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे मजबूत करे। निष्कर्ष में, मल्टीप्लायर्स उन प्रबंधकों, वरिष्ठ अधिकारियों, परियोजना प्रमुखों, उद्यमियों, शिक्षकों और उभरते नेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनका काम दूसरों के माध्यम से परिणाम हासिल करना है। यह उन अनुभवी विशेषज्ञों के लिए भी प्रासंगिक है जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के कारण नेतृत्व भूमिका में आए हैं और अब पाते हैं कि हर महत्वपूर्ण काम उनके पास लौट आता है।
पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह नेतृत्व को अस्पष्ट गुणों की सूची के बजाय देखे जा सकने वाले व्यवहारों में बदल देती है।
पाठक अपनी बैठकों, जिम्मेदारी बांटने के तरीके, प्रश्नों, प्रतिक्रिया और निर्णय प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। साथ ही यह चेतावनी देती है कि अच्छी मंशा अपने आप अच्छा प्रभाव सुनिश्चित नहीं करती। मदद करने, तेज उत्तर देने या ऊंचे मानक रखने की आदत भी टीम को निर्भर बना सकती है।
समान नेतृत्व पुस्तकों की तुलना में इसका विशिष्ट योगदान सामूहिक बुद्धि पर इसका स्पष्ट फोकस है। यह केवल नेता के प्रेरक होने या कर्मचारियों के संतुष्ट होने की बात नहीं करती। यह देखती है कि नेता के व्यवहार से कितनी सोच, पहल और समस्या समाधान वास्तव में सक्रिय होता है।
पांच अनुशासनों का ढांचा पाठक को प्रतिभा, चुनौती, बहस, निर्णय और स्वामित्व के अलग क्षेत्रों में सुधार की भाषा देता है।
फिर भी इसके प्रयोग के लिए परिस्थिति की समझ जरूरी है। सभी निर्णय व्यापक चर्चा से नहीं लिए जा सकते, विशेषकर तात्कालिक संकटों में,
पर सामान्य कार्य स्थितियों में पुस्तक का मुख्य सिद्धांत ठोस है। नेता की सफलता का एक महत्वपूर्ण माप यह है कि उसके आसपास के लोग कितने सक्षम बनते हैं।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लिज वाइजमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।